ओम शांति। आज की इस सुबह में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। आज के इस प्रथम सत्र में राजयोग का मुख्य आधार स्वयं को जानना। वास्तव में देखा जाए तो हम भारतवासी आध्यात्मिक विचार होने के नाते से इतना तो जरूर जानते हैं, मानते हैं कि शरीर में एक चैतन्य शक्ति आत्मा है और वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर को चला रही है, हर कर्म करती है और शरीर छोड़ने पर ये शरीर मृत हो जाता है। इतना बेसिक नॉलेज हम सबको है ही, परंतु राजयोग में जब हम उसको कहते हैं मुख्य आधार, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको हम नहीं जानते हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको जानने से फायदा क्या, क्योंकि आज व्यक्ति अपना समय वहीं इन्वेस्ट करना चाहता है जहां से कुछ प्राप्ति होती हो। और आप सभी तो बिजनेस फील्ड के हैं, बिना प्राप्ति के तो अपना समय देते भी नहीं है। तो इसीलिए आत्मा के ज्ञान से हमारे जीवन में क्या फायदा है, न होने से क्या नुकसान है, और आखिर भी योग के अंदर इस आत्मा के अस्तित्व को समझने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम योग कहते हैं तो आज की दुनिया के अंदर तो अक्सर यही समझा जाता है कि योग माना प्राणायाम, फिजिकल आसन्स। परंतु जब भगवान ने गीता में अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी आसन नहीं लगवाए या प्राणायाम नहीं करवाए, कोई एक्सरसाइज नहीं करवाई, फिर भी हर चैप्टर योग है। तो वो कौन सा योग था? योग का सरल शब्द में अगर अर्थ जाने तो योग माना क्या? योग माना जोड़, संबंध या मिलन। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, योग माना कनेक्शन, किसका किसके साथ। क्योंकि इस भौतिक दुनिया में अगर देखा जाए तो मनुष्य का संबंध भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है, और जब भौतिकता आ जाती है तो कहते इसके जीवन में एक भौतिक योग है। व्यक्ति का संबंध समय के साथ होता है, कोई कार्य अचानक समय पर हो जाए तो यही कहते समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। व्यक्ति का संबंध व्यक्ति से है, और किसी व्यक्ति से अगर समय पर कोई मदद मिल जाती है तो यही कहते इस व्यक्ति का सहयोग था, तब ये कार्य हुआ। कोई व्यक्ति बहुत भक्ति में उतर जाता है तो कहते इसके जीवन में एक भक्ति योग है, ये एक अलौकिक योग है। योग निरंतर चलता है जीवन में। बच्चे का पढ़ाई के साथ योग है, व्यक्तियों का अपने कार्य क्षेत्र के साथ योग है, तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। परंतु राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग है, आत्मा का परमात्मा के साथ। और ये योग संभव तभी है जब आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो और परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो। जीवन भी एक योग है जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो जीवन है नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन माना ही जहां शरीर और आत्मा का संयोग होता है या कनेक्शन होता है, उसको कहते हैं जीवन। इस जीवन के अंदर हम शरीर की वास्तविकता को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि शरीर में आत्मा का निवास स्थान कहाँ है। विज्ञान ने यह तो साबित कर दिया कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा का निवास होता है और इसीलिए ये मस्तिष्क, ये जैसे कि आत्मा का कंट्रोलिंग रूम है जहां से बैठकर सारे शरीर की हर क्रिया को वो कंट्रोल कर सकता है। भारतीय संस्कृति के अंदर हमेशा तिलक लगाया जाता है। तिलक यहीं लगाया जाता है और कहीं नहीं लगाया जाता है। वैसे कहते हैं बहने जब तिलक लगाती है तो सौभाग्य की निशानी है, लेकिन मंदिर में जाते हैं तो भाई बहन सबको तिलक लगता है। ये आत्मा की निशानी है। ब्रुकुटी आसन ये आत्मा का निवास स्थान है। सरफेस मार्किंग ये होता है, लेकिन यहां से ठीक 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे एग्जैक्ट आत्मा की लोकेशन है। सरफेस मार्किंग ये होने के कारण यहां तिलक लगाया, और उसमें भी विशेष करके अगर देखा जाए तो मंदिरों में जब जाते हैं तो चंदन का तिलक विशेष लगाया जाता है, अर्थात वो आत्मा को सम्मान दिया गया, रिस्पेक्ट दिया गया कि आप आत्मा हो, उसका हम सम्मान करते हैं। और चंदन का तिलक इसीलिए लगाया जाता कि चंदन का कलर गोल्डन है, अर्थात आत्मा भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में एकदम प्योर है। चंदन लगाने से शीतलता महसूस होती है, अर्थात आत्मा का स्वधर्म स्वगुण शांति है, और चंदन की खुशबू चारों ओर फैलती है, अर्थात जब आत्मा अपने प्योर और शांत स्वरूप में होती है तो अपने सद्गुणों की खुशबू चारों ओर फैलाती है। भारतीय संस्कृति के अंदर हर चीज के पीछे एक मर्म है, हमने उसको समझा नहीं लेकिन करते आए हैं। आध्यात्मिक जागृति के द्वारा हम इन सब रहस्यों को समझने लगते हैं, और तब जब उसको जीवन में अप्लाई करते हैं तो उस जीवन के अंदर भी एक अर्थ हम भर देते हैं। शरीर और आत्मा दो चीज। शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना 5 तत्व, और इसीलिए शरीर जीने के लिए वही 5 तत्वों की डिमांड करता है। ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। पानी चाहिए, क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर 60 से 70% पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो गया कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं, एक्सेस नहीं पीते हैं कि कल के लिए चलेगा, नहीं। ये पांचों तत्व शरीर की डिमांड है, क्योंकि उसी से शरीर बना है। इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? ये सोचते आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए, क्या समझते हो? शरीर को तो पांच तत्व चाहिए, अगर एक तत्व भी कम हो जाए तो सफोकेट होने लगता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। इस शरीर के अंदर आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? हर आत्मा को भी जीवन जीने के लिए सात बातें चाहिए, शरीर को पांच चाहिए। और इसीलिए सारे संसार के अंदर ईश्वर ने हर प्रकार के प्राणी मात्र के लिए ये पांचों तत्व एक समान बनाकर रख दिए, कोई भेदभाव नहीं रखा कि भारत वालों को अलग, दूसरे देशों वालों को अलग, या हिंदू धर्म वालों को अलग, दूसरे धर्म वालों को अलग, नहीं, एक समान। ठीक इसी तरह आत्मा को भी जीवन जीने के लिए जो सात बातें चाहिए, वो भी सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए एक समान है, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। वो सात बातें कौन सी चाहिए जीवन जीने के लिए हर आत्मा को? तो आत्मा एक चैतन्य शक्ति जिसको कहा गया सतोगुणी है। सतोगुणी यानी जो सात गुणों का एसेंस है। और वो सात गुण कौन से हैं? तो सर्वप्रथम हर इंसान को जीने के लिए ज्ञान चाहिए। इसीलिए एक बच्चा भी होता है ना, जब वो बोलना भी नहीं सीखा होता है और अगर रोता है और उसके सामने कोई आवाज करने वाला खिलौना रख दो, चुप हो जाता है। आवाज कहां से आ रही है, ये जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा उस उम्र से है। सबसे पहली जो नीड है आत्मा की जीवन जीने के लिए, वो है ज्ञान। थोड़ा बड़ा होता है, वही खिलौने को पकड़ता है, हाथ में से तोड़ता है, देखने के लिए ये आवाज कहां से आ रही थी। और जब वो आवाज बंद हो जाती है तो खुश होता है, मैंने इसकी आवाज को बंद कर दिया। ये नहीं सोचता है मैंने तोड़ दिया, आवाज को बंद कर दिया। जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, हर बात को, बोलना नहीं सीखा है लेकिन जब आप बोलते हो तो इतना ध्यान से आपके तरफ देखेगा, हर प्रोनाउंसिएशन, हर शब्द, उसका मतलब क्या है, उसको जानने समझने का प्रयत्न करता है। तो आत्मा की सबसे पहली जो आवश्यकता है इस संसार में जीने के लिए, वो है ज्ञान। इसीलिए जब स्कूल में बच्चे को भर्ती करते हैं तो उसको सबसे पहली प्रार्थना यही सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो हे प्रभु। लेकिन जैसे जैसे स्कूल में ज्ञान प्राप्त करता जाता है, सचमुच ज्ञान आता है या अज्ञान आता है? क्या कहेंगे? ज्ञान आता है या सूचनाएं इकट्ठी करता है? ज्ञान आता है या सूचनाएं इकट्ठी करता है? किसी ने बहुत सही कहा है, वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, हर बात की इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचनाएं ज्यादा है, ज्ञान लुप्त हो गया है। और इसीलिए जीवन में अगर देखा जाए, जैसे जैसे बच्चा पढ़ करके बड़ा होता जाता है, डिग्रियां हासिल करता है, ज्ञान नहीं आता है, अहंकार आता है। और अहंकार सबसे बड़ा ज्ञान है। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन लाइफ। अहंकार सबसे बड़ा ज्ञान है। तो ज्ञान है या अज्ञान है? ज्ञान विनम्र बनाता है, विनय ले आता है। आज न विनय है न विनम्रता है। तो ज्ञान आया कि अज्ञान आया? अहंकार आया, उद्धतपना आया, तो ये ज्ञान है कि अज्ञान है? तो दिनों दिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, वो अपनी पहली आवश्यकता ज्ञान से बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। उसके साथ साथ दूसरा पवित्रता आवश्यक। एक बच्चा जब पैदा हुआ तो कितना इनोसेंट, निर्मल, पवित्र, ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो प्यूरिटी भी लुप्त होती जाती है और इतनी इम्प्यूरिटीज हमने इकट्ठी कर ली लाइफ में, अनेक विकृतियों के रूप में। तो दूसरी आइडेंटिटी से भी हम बहुत दूर चले गए, जो हमारी वास्तविकता है उससे बहुत दूर चले गए। इसीलिए पवित्रता एक ही स्थान पर अभी देखने को मिलती है। कहां? मंदिरों में। मंदिरों में क्यों इंसान जाता है? प्योर वाइब्रेशन तो है, वहां भी धीरे धीरे इंप्यूरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसीलिए उस स्थान पर थोड़ी देर जाकर के भगवान के सामने बैठता है, सोचता है आखिर भगवान तो प्योर है, वहां से कुछ प्योरिटी के वाइब्रेशन मिले। और भगवान से ही जाकर क्या कहता है, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे, प्रभु तू साफ कर देना। प्योर होना चाहता है, कैसे हो ये मालूम नहीं, तरीका मालूम नहीं, तो भगवान कोई कह दिया मैं तो मैला होकर आया, तू साफ कर दे। भगवान भी कहता है कब तक साफ करता रहूंगा। अब उसने भी साफ करना छोड़ दिया, क्योंकि नियत है नहीं साफ होने की, बाहर निकलकर फिर मैला होना है। तो भगवान कहते हैं तू रहे ऐसे ही। इसलिए दिनों दिन दुनिया के अंदर जो इम्प्योरिटी है बढ़ती जा रही है। मनुष्य के मन के अंदर कितनी विकृति बढ़ती जा रही है दिखाई देता है, रोज के समाचारों में सुनते हैं। तो जो हमारे एक निर्मलता, प्योरिटी, एक इनोसेंस थी, वो समाप्त हो गई। तो कितना अनकंफर्टेबल फील करता है मनुष्य आज, दूसरों से अपेक्षा रखता है कि भाई इसके जीवन में हमारे साथ व्यवहार करने में प्योरिटी हो, इंटेग्रिटी हो, या ऑनेस्टी हो, सत्यता हो, झूठ बोलना मेरा पसंद नहीं है। हमारी अंदर की सच्चाई कितनी है, प्योरिटी कितनी है? वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम आवर रियल आइडेंटिटी। जहां ईगो है, इम्प्यूरिटी है, उस संबंध में कभी प्रेम हो सकता है? और आज हर इंसान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। एक बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है उसको अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन बहुत प्यार पाए इसलिए बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा नहीं। हर एक को प्यार चाहिए, तभी तो किसी ने बहुत सही कहा है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अफसोस, हम इस जीवन के अंदर ढाई अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ सके। और प्रेम के बदले क्या आ गया जीवन में? स्वार्थ आ गया, मतलब आ गया। अरे आज छोटा बच्चा होता है ना, उसको भी जब माता पिता बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं, बेटा तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कहने लगते हैं, तो बच्चा भी कहता है मतलब की बात करो, इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ जाता है वो भी, लेकिन बड़े समझते कि हम किसी को अगर पॉलिश करेंगे तो शायद उसको समझ में नहीं आएगा। अरे एक बच्चा समझ जाता है तो बड़े नहीं समझेंगे क्या? बच्चा भी जब कहने लगता है कि मतलब की बात करो, क्या करवाना है, इतना क्यों मक्खन लगा रहे हो आज, तो प्रेम नहीं रहा, स्वार्थ मतलब आ गया है, नफरत इसीलिए जागृत हो रही है। और इतनी नफरत भरी दुनिया में, कितनी नफरत बढ़ती जा रही है। और जहां ये तीनों ही नहीं है वहां शांति कहां से हो सकती है? और हर इंसान को क्या चाहिए? कोई भी जाति धर्म वाले को क्या चाहिए? शांति तो चाहिए। भगवान से कहा है हमको मन की शांति देना, है ना? चारों चीज हम भगवान से ही मांगते रहे, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, है ना? बूंद भी मिल जाएगी तो बहुत है जीवन जीने के लिए। हमको मन की शांति देना, प्रार्थना करते रहे। लेकिन शांति का आधार ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग। आज अंडरस्टैंडिंग नहीं रही इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। पवित्रता नहीं है, प्यूरिटी नहीं रही इंटेंशंस में, नियत साफ नहीं है, प्रेम के बदले स्वार्थ है, नफरत है, तो शांति कहां से होगी? भगवान से मांगने पर भी नहीं मिलेगी। कोई चीज थोड़ी जो ऊपर वाला कहेगा लो फेंक दिया मैंने, ले लो, चीज थोड़ी है। आंतरिक भावनाएं हैं, लेकिन ये भावनाओं में अशुद्धि आ गई है तो शांति नहीं है। और जहां ये चारों चीज नहीं है वहां जीवन का सुख कहां से होगा? डनलप के गद्दे पर सोने पर भी नींद की गोलियां लेनी पड़ती है तो भी नींद नहीं आती है, सुख कहां है, चैन कहां है? और जहां ये पांचों बातें नहीं है। सुख सुविधा के साधन सारे हैं, लेकिन सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं है। और जहां ये पांचों बातें नहीं है तो जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद नहीं। आनंद तो छोड़ो, खुशी, फर्स्ट स्टेप खुशी, वो भी नहीं रही। वो खुशी भी कहां गायब हो गई है। आज व्यक्ति मुस्कुराना भूल गया है। खुशी का अनुभव करने के लिए लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में हंस नहीं पाता है। सोचो, अगर घर में मुस्कुरा दिया ना, तो सबसे पहले घर वाले पूछते क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो। और अगर हम अपने मुस्कुराहट का कारण बताना नहीं चाहते हैं और बस ऐसे ही कह दिया, क्यों मुस्कुरा नहीं सकते क्या, बस ऐसे ही मुस्कुरा रहे, तो घर वाले क्या कहेंगे, आर यू ओके, माना हाउ कैन यू स्माइल विदाउट अ रीजन। अब बिना वजह कैसे मुस्कुरा सकते हो, माना अपनी मुस्कुराहट के पीछे हर बात के लिए हमें एक वजह देनी पड़ती है। और अगर वजह नहीं दिया तो कहेंगे इज नॉट ओके। आज एक बच्चा मुस्कुराता है तो उसको नहीं कहते इज नॉट ओके, ये इसके नेचुरल है। हमारा नेचुरल स्वरूप वही है, लेकिन समझदारों की दुनिया के अंदर मुस्कुराना भूल गए हम। अब बताओ क्या लाइफ की क्वालिटी हो गई जहां मुस्कुरा नहीं सकते हैं। ऑफिस में अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के आप जाओ तो सारे आपका स्टाफ देखने लगेगा, वाह भाई बड़े खुश नजर आ रहे हैं, आज जो काम करवाना है ना करवा लो, जिस पर सिग्नेचर लेनी हो ले लो, हो जाएगा, बड़ा खुश लग रहा है आज, है ना। इसलिए भी व्यक्ति थोड़ा टाइट होके चलता है, कोई मेरा एडवांटेज न ले। क्या क्वालिटी है लाइफ की बताओ, ये क्वालिटी है जहां मुस्कुराना ही चाहते हुए भी मुस्कुरा नहीं सकते, खुश रहना चाहते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते। और जहां ये छह बात नहीं है तो आत्मशक्ति विल पावर है ही नहीं। विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। आज एक बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ाई करके जाता है, होमवर्क करके जाता है, लेकिन एग्जाम पेपर आते ही ब्लैंक हो जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म। ब्लैंक पेपर छोड़ करके आ जाता है बाहर, है ना, और उसको पूछ भी नहीं सकते हैं क्या हुआ, डर रहता है कहीं सुसाइड ना कर ले। माँ बाप को यही कहना पड़ता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर कर देना, कोई बात नहीं, कहीं कोई गलत कदम न ले ले, उठा ले। इसीलिए तो ये सात गुण ये आत्मा की वास्तविकता है, लेकिन इस वास्तविकता से हम बहुत दूर चले गए। योग मेडिटेशन माना क्या, इट्स अ जर्नी बैक टू द रियल सेल्फ, अपनी वास्तविकता के तरफ आने की एक यात्रा, और इस यात्रा को कहा गया है योग। अपने आप से अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ जोड़ना अपने आप को, क्योंकि हम कट ऑफ हो गए हैं, अपने आप से ही कट ऑफ हो गए हैं। इसलिए आज इंसान भटक रहा है जीवन के अंदर, कुछ चाहिए खोज रहा है लेकिन क्या चाहिए मालूम नहीं है। ये सात गुण चाहिए क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। दूसरे शब्द में अगर मैं कहूं तो ये सात गुण ये आत्मा की बैटरी है, लेकिन आज के युग में ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब उसको चार्ज करना है। मेडिटेशन माना ही अपनी बैटरी को चार्ज करना। खाली शांति में बैठ नहीं जाते हम, लेकिन उसको चार्ज करते हैं। कैसे चार्ज करते हैं? आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है जो कहा जाता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। As you think so you become। तो पहला तरीका चार्ज करने का है अपनी सोच को एक दिशा दो, पॉजिटिव दिशा। क्या सोचना है? क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में क्या है? ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। इसीलिए भी जब बच्चा बहुत ओवरथिंकिंग करता है तो भी मां बाप को डर लगता है कि ये हाइपर हो रहा है, बहुत ज्यादा सोच में बैठ जाता है, कहीं डिप्रेशन का शिकार न हो जाए ना। तो इसीलिए कहा कि मेडिटेशन माना पॉजिटिव सोचना, और पॉजिटिव सोचते हुए अपनी वास्तविकता के साथ जुड़ना। जब उस कॉन्शियसनेस में हम अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं तब बैटरी चार्ज करते हैं। आत्मचिंतन ये सबसे पहला आधार है मेडिटेशन का। जब तक हम अपनी वास्तविकता से नहीं जुड़े तो ईश्वर से जो सोर्स है उसके साथ भी नहीं जुड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को उस आत्म स्वरूप में स्थित करना है। बार बार गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन आत्म भावस्थ, आत्म भाव में स्थित हो जा। आत्म भाव यानी आत्मा की जो वास्तविकता है उस कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्टेबलाइज करो। ये सबसे पहला आधार है मेडिटेशन का। मेडिटेशन माना कोई ब्लैंक नहीं हो जाना है, विचार शून्य नहीं हो जाना है, आत्मचिंतन के विचार करने हैं, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। दुनिया में मनुष्य ने अपने बैटरी अनजानेपन में भी चार्ज करने का प्रयत्न किया। कैसे किया? अनेक तरीके अपनाया। पहला तरीका अपनाया, संबंधों में अपेक्षा रखी। ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे, व्यक्तियों से अपेक्षा रखी। मिला? व्यक्तियों से मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तभी मैंने दूसरों से अपेक्षा रखी, तो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज करेगी? बोलो, कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए फ्रिक्शन है लाइफ में, संबंधों में। फिर क्या कहते हैं? अरे थोड़ा सा प्यार ही तो चाहा, थोड़ी सी खुशी ही तो चाहिए। इतनी भी नहीं दे सकते, लेकिन है तो देवे ना, है ही नहीं तो कैसे देवे। हमने उनसे अपेक्षा रखी, उन्होंने हमसे अपेक्षा रखी, अब दोनों एक दूसरे के अपेक्षा में एक दूसरे को दे नहीं पाते, तो तो आज रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कितने होते जा रहे हैं, कितने रिलेशन, कितने संबंध टूट रहे हैं, किस लिए? अरे थोड़ी सी खुशी चाहिए, वो ही नहीं दे सकते हैं। हो तो देवे ना, हो तो देवे। तो संबंधों में अपेक्षा रखने पर प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब है ही नहीं, बैटरी डिस्चार्ज है दोनों की, कैसे दे सकेंगे एक दूसरे को? इसीलिए आज लाइफ की क्वालिटी क्या हो गई है, संबंधों की क्वालिटी क्या हो गई है, रोज के संबंधों में जो फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, संबंध टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, और कई लोग इसलिए डिप्रेशन के शिकार भी बनते जा रहे हैं। संबंधों में अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होता है। तो दूसरा तरीका बैटरी चार्ज करने का कौन सा है? अपेक्षा रखने के बजाय देना शुरू करो। व्हाट यू गिव यू गेट, ये तरीका है। जो देंगे वही वापस आएगा। आप किसी को खुशी देंगे, खुशी वापस आएगी। आप किसी को ज्ञान बांटो, ज्ञान की वृद्धि, इसीलिए कहा जाता है बांटने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। हमने अपेक्षा रखना चालू कर दिया, बांटना बंद कर दिया। बांटना ही बंद कर दिया तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई और फ्रिक्शन बढ़ती गई, संघर्ष बढ़ता गया। बांटना चालू करो, देखो क्या मैजिक होता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है, सुख बांटने से बढ़ता है। बांट करके देखो कितना सुकून मिलता है या नहीं मिलता है ना? तो पहला तरीका है सोच को पॉजिटिव करो, दूसरा तरीका है बांटना शुरू करो, देखो बैटरी चार्ज होती है कि नहीं, इंजन चालू हो जाएगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बहुत सुकून मिलेगा आपको। सुख एक बार आ गया ना, सुकून मिला, देखना एक साथ में से एक भी आ गया ना, एक दूसरे को खींचना चालू करेगा और सातों गुण आ जाएंगे। ये सीक्रेट है लाइफ की। इस सीक्रेट को जिसने समझ लिया वो फिर अपेक्षा नहीं रखता है, देना चालू करता है। दो दिन नहीं देंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कदर नहीं करेंगे, फिर उसके बाद देखो कैसा होता है मैजिक, मैजिक ऑफ लाइफ अनुभव होगी। तो सबसे पहला, संबंधों में अपेक्षा नहीं रखो, देना शुरू करो। दूसरा तरीका अनजानेपन में हमने अपनाया वो था कर्म करो। इसीलिए व्यक्ति सोचता है चलो कर्म करो। वर्कोहलिक क्यों बन जाता है व्यक्ति? सोचता है कर्म करने से प्राप्त होगा। आज इंसान धन कमाता है, बिजनेस करता है, क्यों? धन चाहिए जीवन में, किस लिए? सोचता है धन होगा तो सुख शांति से जीवन जी सकेंगे, इसीलिए ना। करोड़पति को पूछ लो सुख शांति आ गई तो क्या कहते? भगवान की दया से सब कुछ है लेकिन यही नहीं है। धन आ जाता है लेकिन धन कोई माध्यम नहीं आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। इसीलिए धन आ गया, बैटरी चार्ज नहीं हुई तो कर्म करने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है। न सुख है, न शांति है, न खुशी है, न आनंद है, कुछ नहीं है। मशीन की तरह इंसान बनता जा रहा है, वर्कोहॉलिक हो गया है, यही टाइटल मिल जाता है, ये वर्कोहॉलिक है। तो विभिन्न कर्म किए बैटरी चार्ज करने के लिए, नहीं हुआ। तब तीसरा तरीका अपनाया, कौन सा? भगवान को याद करो, शायद मिल जाए। इसलिए भगवान को याद किया, ये सातों बातें उसी से मांगी। अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, मैली चादर ओढ़ के आए अरे द्वार तेरे, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम, हमको मन की शांति देना। ये चारों चीज मांगी, जब नहीं मिला तो उसको उसका कर्तव्य याद दिलाया, हमने भगवान को उसका कर्तव्य याद दिलाया। क्या कहा? हे प्रभु, तू दुख हरता सुख करता है, सुख दो, तुम्हारा ये कर्तव्य है, हम तेरे बच्चे हैं, हमको दो। उसका कर्तव्य उसको याद दिलाया। दूसरा क्या कहा? तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद दो। पहले चार में मांगा, नहीं मिला तो उसको कर्तव्य याद दिलाया, फिर भी नहीं मिला तो लास्ट में तो धमकी देते हैं हम। क्या कहते हैं? हमको मन की शक्ति देना, अरे इतनी शक्ति देना दाता, जो विश्वास कभी कम न हो। धमकी दिए ना कि अगर शक्ति नहीं मिली तो विश्वास कम हो जाएगा, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर मेरा विश्वास तेरे में से कम हो गया तो तू रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं हूं। क्यों? मैं इतना मांगा, तेरे को याद भी दिलाया तेरा कर्तव्य क्या है, फिर भी नहीं दिया, फिर अगर विश्वास कम हो गया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम ना हो। अब दिनों दिन क्या हो रहा है? विश्वास हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। आज व्यक्ति को अगर मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, बहुत बिजी है ना, टाइम नहीं है। आप लोग कर लेना, प्रार्थना कर लेना मेरे तरफ से भी, है ना। तो संबंधों में अपेक्षा रखी, नहीं मिला, कर्म किया नहीं मिला, प्रार्थना किया नहीं मिला, तो चौथा तरीका क्या अपनाया? या मर जाओ या मार दो, सामने वाले को मार दो या मर जाओ, सुसाइड कर लो। अब इतना मनुष्य सुसाइड क्यों करता है? सुसाइड क्यों करता है? उसको पूछो, सुसाइड, शांति नहीं है, सुख नहीं है, कोई हमें चाहता नहीं है, प्रेम नहीं है, खुशी नहीं है जीवन के अंदर, ऐसा जीवन जी के फायदा क्या? इसे तो मर जाना अच्छा है, इसलिए मर रहा है। या तो मेरे दुख अशांति का कारण यही है, इसको मार दो, इसलिए मार रहे हैं एक दूसरे को। आज कितने किस्से बने, कितने किस्से बनते जा रहे हैं, शादी से पहले ही मार रहे हैं एक दूसरे को। अब बताओ क्यों मार रहे हैं? हमको इससे प्यार ही नहीं है। अरे प्यार नहीं है तो क्यों बंधन में जुड़ने जा रहे हैं? नहीं जुड़ो, नहीं इसको मार दो। अच्छा, मार देना ये कोई सॉल्यूशन है? मार देने से तुम्हें सुख शांति मिल जाएगी? क्या होगा? जिंदगी भर जो जेल में पड़ना पड़ेगा, क्या ये जीवन चाहा था? ये चाहना थी? नहीं, हम ऐसा रफा दफा कर देंगे, उसको नेचुरल डेथ दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। सत्य कभी छुपता है? सत्य कभी छुपता है? कहां ना कहां से तो बाहर आ ही जाता है। कितने किस्से दुनिया में हो रहे हैं, भारत में कितने किस्से, और रोज की एक नई कहानी सुनने को मिलती है। बताओ क्या इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी? खुद को मारने से या दूसरों को मारने से बैटरी चार्ज होगी? कितनी अज्ञानता है व्यक्ति के जीवन में, कितना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। जैसे शरीर को 5 तत्व में से 1 तत्व न मिला तो सफोकेट होता है, तो 7 गुणों में से 1 भी गुण नहीं है तो कितना फ्रस्ट्रेशन। आत्मा सफोकेट हो रही है, आत्मा सफोकेट हो रही है। ये सफोकेशन का परिणाम है जो या तो खुद को मारते या दूसरों को मारते हैं। बताओ क्या लाइफ की क्वालिटी है फिर? उसके बाद जेल में पड़े रहने से और फिर पश्चाताप करने से कोई प्राप्ति? कोई प्राप्ति नहीं। मारने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है तो टुकड़े टुकड़े करते हैं। बताओ अब एक मृत शरीर को टुकड़ा करने से क्या खुशी मिली, शक्ति मिली, आनंद मिला, क्या मिला? बताओ, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। क्या लाइफ की क्वालिटी है? कितना व्यक्ति मानसिक रीति से विकृत हो गया है। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद जो नेगेटिविटी में चला गया, ये उसका परिणाम है। इसलिए कहा, आत्मा के ज्ञान से फायदा क्या? जब ये पता चला कि आत्मा सतोगुणी स्वरूप, ये उसकी बैटरी है, तो फिर बैटरी सही तरीके से चार्ज करो। जितना सही तरीके से चार्ज करेंगे तो जीने का आनंद आएगा, है ना? जो दूसरा टॉपिक है 9:30 बजे, जीना इसी का नाम है। उसमें और इस विषय को अच्छे तरह से खोलेंगे कि कैसे जीना चाहिए, जीने के रियल आनंद किसमें है, और कैसे बैटरी को सही तरीके से चार्ज करें ताकि सचमुच हमें कोई गलत तरीका, नेगेटिव तरीका अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जीवन का भरपूर आनंद ले सकेंगे। ठीक है, तो ये आत्मा की वास्तविकता से हमें बैटरी चार्ज करने का सही तरीका मिलता है। और बस आत्मा सतोगुणी है, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम बैठ के आत्मचिंतन करेंगे और आत्मचिंतन से आत्मा की बैटरी को चार्ज करेंगे, क्योंकि थॉट एनर्जी है, विचारों की जो शक्ति है, उस शक्ति से ही हमें आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। ठीक है, चले थोड़ी देर बैठे, मेडिटेशन करें, आत्मचिंतन करेंगे, सीधा होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो। आत्मा मालिक है, शरीर की कर्मेंद्रिय उसके सर्वेंट है, तो उसको स्वस्थ होकर के बैठ करके, जागृत अवस्था में बैठ करके, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं तो कभी कभी शांति में ले जाते हैं ना मन को, तो दूसरी अवस्था में चले जाते हैं, फिर आवाजें भी निकलती है, फिर पूछते हैं अगर कैसा रहा, कहते बड़ी शांति थी। लेकिन ये शांति कौन सी थी? निद्रा की शांति थी। हमें निद्रा की शांति में नहीं जाना है, हमें योग की शांति का, एक शांति की शक्ति का अनुभव करना है। ठीक है, इसलिए स्वस्थ होकर के बैठेंगे, अपनी पीठ सीधी हो, आंखों को अगर खुला रख सके तो बहुत अच्छा है ना। परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करेंगे और अपने जीवन में उसका अनुभव करेंगे। जो मैं विचार देती जाऊं उसको खाली रिपीट नहीं करना है, लेकिन उसको महसूस करना है, फील करना है। ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए एक ऐसी यात्रा पर कुछ क्षणों के लिए मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मस्वरूप में स्थित करते हैं, अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, ब्रुकुटी की मध्य में मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं, प्रकाश पुंज हूं। चैतन्य शक्ति हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं, निर्मल हूं। पवित्रता का तेज मेरे चारों ओर फैला हुआ है, एक प्रभा मंडल के रूप में। मैं आत्मा प्रकाश पुंज, पवित्रता के प्रभा मंडल में स्वयं को देख रही हूं। कितना दिव्य स्वरूप है मेरा, कितना सुंदर स्वरूप है मेरा। ये मेरी वास्तविकता है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान का प्रकाश मुझ में समाया हुआ है। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म स्वगुण शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है, शांति के प्रकंपन को अपने चारों ओर महसूस कर रही हूं। कितनी शांति है, मन शांत और शीतल होता जा रहा है। रोम रोम में शांति के प्रकंपन समा रहे हैं। प्रवाहित हो रहे हैं। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप इस स्वधर्म में स्थित होने पर कितना सुकून महसूस हो रहा है। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप मेरा सत्य स्वरूप मेरी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। कितना सुंदर अनुभव है ये। मैं सतोगुणी आत्मा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप धीरे धीरे मन को ईश्वर के सानिध्य में ले चलते हैं। जैसे मैं चैतन्य शक्ति हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी चैतन्य शक्ति है। दिव्य तेजोमय आत्मा की बैटरी को चार्ज कर रही हूं। परमात्मा पिता से जोड़कर जो सर्व शक्तियों का स्रोत है, धीरे धीरे मैं आत्मा प्रकुटी आसन में स्थित हो करके ओम शांति शांति शांति।